الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جسے یہ پسند ہو کہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ عز و جل اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
غصے کی وجہ سے بعض اوقات جو ناچاکیاں ہو جاتی ہیں طلبہ کے دوران یا ویسی، تو بعض اوقات سننے میں یہ آتا ہے اور بڑوں سے بھی یہ سنا ہے کہ بھئی جو کمزور ہوتا ہے نا جسمانی لحاظ سے اس کو غصہ زیادہ آتا ہے، اور یہ پنجابی میں کہتے ہیں کہ بھئی خالی پانڈا کھڑکدا بڑا ہے، خالی برتن ہو تو اس میں سے آواز بہت آتی. تو کہتے جسمانی طور پھر بات ہے، وہ کھانا پینا شروع کرتا کہ چلو یار اس طرح کھاؤں گا شاید غصہ کھاؤں گا، تو کیا ایسا ہے؟
یہاں جتنے بھی ہیں نا بیٹھے ہوئے ابھی، شاید ایک سے بھی میں کشتی نہیں کر سکتا، چھوٹے سے چھوٹا ہوگا وہ بھی شاید مجھے پچھاڑ دے، اتنا کمزور ہوں. مجھے کتنی بار غصے میں دیکھا ہے آپ نے، جو عوامی اسٹائل ہوتا ہے منہ توڑ دوں گا یہ کر دوں گا، اس طرح کا غصہ. ویسے اندر میں غصہ آ جانا اور اس کا اظہار نہ ہونا وہ ایک الگ بات ہے. پتا چلا کہ ضروری نہیں کہ کمزوری کو غصہ ہے، شاید وہ طاقتور ہو نا اس کو غصہ زیادہ آئے گا، زیر دست جو ہوتا ہے اس پر. ہو سکتا ہے تکبر کی وجہ سے، یار اس کی اوقات کیا میرے سامنے یہ زبان نکالی، چھوڑوں گا نہیں میں اس کو، میرے بارے میں بولتا تھا میں یہ میں وہ، کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو، مچھر گئے گا مسل کے رکھ دوں گا. یہ آپ کو ملے گا جو طاقتور قسم کے لوگ ہوتے ہیں، باڈی بلڈر، یا یہ جن کو اپنے اس پہ اسلحے پر یا کوئی ایسی مطلب قوت پر یا گیدرنگ پر، بازوں کی گیدرنگ ہوتی ہے، خود اتنے لڑاکے نہ بھی صحیح لیکن دوست اس طرح کے ہوتے ہیں تو یہ سب مل کر کسی پر ہلا بول دیں تو اس کا کنڈا کر دیں. تو اس طرح کے لوگوں میں غصہ آپ کو ملے گا، یہ ضروری نہیں کہ کمزور ہو ہی کو غصہ ہے، بالکل آپ موٹے تازے ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملیں گے جو یار ہم کو غصہ بہت آتا ہے. جتنا عوام سے میرا واسطہ پڑا ہے اور عوام جتنے مسائل مجھے بتاتے ہوں گے اتنے زیادہ آپ کو تو نہیں بتاتے ہوں گے اپنے مسائل ذاتی، تو غصے کے تعلق سے میں نے یہ فرق نہیں دیکھا کمزور اور موٹے کو، غصہ سبھی کو آتا ہے. انہیں یہاں شاید ایک بھی نہیں ہوگا کہ جو یہ کہہ دے گا مجھے غصہ نہیں آتا، غصہ تو سبھی کو آتا ہے. اب یہ کہ غصے کو اگر جس کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ مخصوص ہے، وہ شخص اسی میں سے گزر کے داخل ہوگا، دوزخ میں داخل ہوگا. تو یہ غصہ تو آئے گا، آتا آدمی کو تو غصہ آئے گا تو قابو کریں گے ثواب ملے گا، اس کو کنٹرول کرے اللہ کی رضا کے لیے، اس کو نافذ نہ کرے، جبکہ وہ غصہ نفس کے لیے اور اس میں شرعی طور پر مطلب یعنی کہ ممانعت موجود ہے.
کھوئی ہوئی سنجیدگی کیسے واپس؟
تو پہلے سنجیدگی تھی جو کھو گئی،
شروعات میں ہوتا ہے کہ وہ بس چپ چپ رہنے والے مزاج، پھر بعد میں اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم نے اپنی چپ کو چھوڑ کر لوگوں میں محبت اور پیار کو پھیلا دیا ہے، لوگوں کا دل لگا رہے ہیں.
سنجیدگی تو ویسے وہی ہے کہ جو بھی ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو اور عین شریعت کے مطابق ہو وہ اچھا ہے. تو اس میں یہ کہ بندہ हसमुख हो, और जो हसमुख है उसको ये नहीं कहेंगे कि गैर संजीदा है, हम मुस्कुराते रहते जब देखो तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का तबस्सुम तो मशहूर है, और प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में कौन सी खूबी थी जिसको मेरे आका ने नवाजा नहीं है, बल्कि जिसको खूबी मिली दामन अकदस से बरकत लेकर ही नसीब हुई है, तो यूं सारी खूबियों के जामे थे, संजीदगी भी थी। अब ये कह गैर संजीदा हरकतें वो होती हैं कि जिससे बंदे का इमेज खराब होता है कि दूसरा कोई देखे तो उस पर इसकी छाप अच्छी ना पड़े। अब कोई मुस्कुराएगा किसी के साथ तो ये इसकी छाप अच्छी पड़ेगी, बुरी नहीं पड़ेगी, और कोई मुंह फुलाकर बैठा होगा चाहे कैसी उससे बात करो यूं करेगा तो, अब अगर इसको संजीदा बोलते हो तो ये संजीदा नहीं है बल्कि रंजीदा ही है, पता नहीं किसको ख्याल में कि दूसरों को भी रंजीदा कर रहा है। तो हमें मतलब ये कि हसमुख रहना चाहिए, कहा बुलंद ना करे, ये सुन्नत नहीं, इतनी आवाज से ना हंसे कि दूसरा हो तो सुन ले, बाकी हंसना इतना कि खुद सुने इतनी आवाज निकली तो ये तो साबित है प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से। तो हंसमुख होंगे और तबस्सुम आपके चेहरे पर रहेगा तो दीन का काम आप कर पाएंगे, मुंह चढ़ा हुआ होगा तो फिर लोग बोलेंगे जाहिद है, खुश्क है। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बाज औकात खुशतबरी की गुफ्तगु साबित है, जो 100% शरीयत, वो सरकार जो करे वही शरीयत है, हम क्या पेमाइश करेंगे, 100% वापस ले लेता हूं यानी। लेकिन ये खुशतबरी चंद बार साबित है, 5-6 रिवायतें ऐसी हैं जिसमें ये प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने वो खुशतबरी फरमाई। वो इमाम गजारी ने लिखा है कि इसकी आदत ना बनाए, भले वो दुरुस्त भी है, किसी की दिल आजारी भी नहीं हो रही, कोई डिग्रेड भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल यानी कि बेसरर खुशतबरी जो सरकार की थी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, तो वो भी चूंकि चंद बार साबित है तो इसलिए वो भी बार बार ना करे। मगर हमारी जो खुशतबरी है ना वो बार हाथ दिल आजार होती है, और हमको कोई बोले ना कि यार हमारी तो चलती है, अब ये भी बातों का झूठ होता है, चलती वलती नहीं होती, जेब मिटाने के लिए कोई टोके दो हमारी चलती है, और अगला भी बेचारा हंस रहा होता है वो भी अपनी जेब शर्म छुपा रहा होता है, अंदर से उसका दिल कट रहा होता है कि उसको सबके सामने उसको डिग्रेड किया, उसका मजाक उड़ाया, भले ना वो जाहिल होता है या बेवकूफ टाइप का बंदा होता है बाजूकात, लेकिन वो भी जब उसका मजाक उड़ेगा तो समझ आ जाती है आमतौर पर यार ये मेरे को मामू बना रहे तो मजाक उड़ा रहे मेरा, लेकिन उसका बिचारे का इतना वो नहीं होता पोजीशन कि मेरी को हिमायत तो करेगा नहीं, वो साथ में हंसता है। तो ये जरा अगर दिलाजार मजाक करेंगे फिर तो गुनाह होगा, चाहे वो सच्ची बात ही क्यों ना हो, मोटे को अरे मोटे ये कहा, बात तो सच्ची है तो मोटा, लेकिन दिलाजारी जैसी तैसी होगी उसकी, गुनाहगार तो होगा ना सकेने वाला। इसी तरह तवीलुल कामत है या पस्त कद है या दुबला पतला, उसको भी अगर हम कहेंगे इस तरह की बात दिल आजारी तो अंधे को अंधा भी नहीं कहेंगे, नाबीना कहना पड़ता है, या हाफिज जी लोग बोलते हैं, चलो हाफिज जी ना बोले, नाबीना में गुस्सा नहीं आएगा उसको, अंधा बोलेंगे तो अच्छा नहीं है। वो मदनी चैनल का चुटकुला याद आ गया, वो चला दिया था इन लोगों ने भी मदनी चैनल पर, वो बुजुर्गों का कोई मदनी कोई कुछ था सिलसिला, तो उसमें हमारे साईं भाई होते, वो ने 2-3 बार कहा होगा या हमारे बूढ़े साईं भाई या इस बूढ़े बूढ़े 2-3 बार का एक बुजुर्ग को चला ला गया, उन्होंने उठकर कह दिया अगर अब आप बूढ़ा बोलेंगे ना कम अज कम मैं चला जाऊंगा। अच्छा ये इन्होंने ऑनर कर दिया, लाइव नहीं था लेकिन बाद में एडिटिंग में निकाला नहीं ऑर्डर करते, चलो इससे हमको सीखने को मिला। फिर हमने भी बुजुर्ग कहने का एहतमाम कर लिया, अब हम बूढ़े को बुजुर्ग बोलते हैं कि बूढ़ा बुरा लगता है, ये भी बूढ़े को बूढ़ा कहना, जवान को जवान को तो बुरा नहीं लगेगा। हाँ बूढ़े को कहो ना यार आज तो आप जवान लगते हैं, आप देखो फिर उसकी चाल चेंज हो जाएगी, मुझे मत कहना, आप कहेंगे तो मैं समझ जाऊंगा। असल तो मौके की मुनासिबत से संजीदगी या मतलब ये खुश तभी, खुश तभी मौके के हो और मुस्कुराना भी मौके का हो। मैयत पड़ी है जवान बेटे की, आप बाप से ताजियत करने गए और अब मुस्कुरा कर ताजियत कर रहे हैं, तो ये उसके अंदर मतलब बोग्स पैदा हो सकता है कि लगता है यार कोई पुरानी दुश्मनी है इसको मेरे से, ये रोक नहीं रख पा रहा अपनी खुशी को। मेरे बेटे से कभी झगड़ा हो गया होगा तब ये चला गया तब ये खुश हो रहा है, तो इसलिए वो मौके की मुनासिबत से या कोई मरीज की पोजीशन के हिसाब से मुस्कुराहट या संजीदगी को कमजदा उसके सामने वो गम के आसार पैदा करने चाहिए। इमाम गजाली अलैहि रहमतुल्लाह वाली ने लिखा है صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।
ये मदनी नमाज पर इस्तिकामत किस तरीके से हासिल हो?
आप इसका जवाब दे के आपको रोजाना 3 टाइम खाने पर इस्तिकामत कैसे मिली, जो आपका जवाब होगा वही मेरा जवाब है। जवाब मिल गया तो इस तरह खाने के लिए पूरा तरकीब होती है कि बस खाना ही खाना है, खाना ही खाना है, भूख ना हो तब भी खाना है। तो मदनी इनामत के लिए भी ऐसा जज्बा जब मिल जाए ना तो इस्तिकामत कहाँ जाएगी
इंशाअल्लाह।
सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि
गुलाम मुज्तबा तारी 12 माह के सफर में हूँ। अर्ज है कि जब मैं ना छोटा था तो मेरे वालिद साहब ने मुझे मुरीद करा दिया था, तो जब मैं बालिग हुआ तो मैंने आपकी बैत कर ली, जबकि मेरी पहले नियत थी कि मैं उन्हीं पीर साहब का मुरीद हूँ जिसका पहले मेरे वालिद साहब ने मुरीद करा दिया था। तो क्या मेरी जब मैंने आपकी बैत की तो उनसे बैत टूट गई?
ना बालिग का मुरीद होने से यानी कि पीर वालिद ने मुरीद करवा दिया तो एक दिन के बच्चे को भी वो बैत करवा सकता है। अब अगर पीर साहब जामे ये शराइत हैं और आपने उनसे बैत नहीं तोड़ी, ना अकीदत आपकी खत्म हुई है, तब तो उनके मुरीद बाकी हैं आप, और अगर उनसे अकीदत खत्म हो गई है तो बैत खुद ब खुद टूट गई।
वो जामे शराइत भी हैं और मैंने अकीदत भी नहीं तोड़ी उनसे।
बस तो मदीना मदीना असल मुरीद तो उन्हीं के है।
तो अभी आप जब भी मुरीद करवाते हैं तो मैं यही कहता हूँ कि तालिब होता हूँ,
मगर पहले आप मुरीद हो चुके हैं ना, अब तालिब होने। जैसे कि निकाह में 3 बार कबूल करवाते हैं ना, कबूल कबूल कबूल, अब निकाह में कबूल करवाया उसने कहा मैंने कबूल किया, क्या दूसरी बार पूछे कबूल किया अब कहते कबूल नहीं किया, फर्क पड़ेगा? अब मौलाना लोग बताएंगे, पहले तो कबूल कर चुका ना। तो खैर वो आप चूंकि वहां अकीदत भी फस्ख नहीं हुई, आपकी बैत तोड़ने की भी कोई नियत नहीं थी, तो इसीलिए उन पीर साहब की बैत टूटी नहीं, आप उन्हीं के मुरीद हैं। जबकि जामे शराइत हैं तो मदीना मदीना छोड़ने की भी जरूरत नहीं, पीर साहब को पकड़ के रखे जहां से फेज मिला ना कहीं से भी, तो यही जहन रहे हमारा। यानी कि बुजुर्गों ने लिखा है कि मुझे जो भी मिला मेरे ये मेरे पीर का फैज है, आपको दावत ऐसा भी मिली तो ये भी आपके पीर का फैज है।
सुभानअल्लाह,
हमारा कोई पीरों से झगड़ा थोड़ी है, जो जामे शराइत पीर है हमारे सर का ताज है।
जज़ाकअल्लाह खैर
व इय्याकुम सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला
अहमद इफ्तिखार अतारी जिला रहीमियार खान खानपुर से। शायर ने क्या खूबसूरत कहा है कि दुआ मंगिया करो संगियो किसी मुर्शिद ना रुस जावे, जिन्हा दे पीर रुस जांदे ओ जूंदे भी मरे रहंदे, इसका क्या मतलब होगा?
आसान तो ही जो पंजाबी थोड़ी बहुत भी समझता हो उसके लिए ज्यादा शायद मुश्किल नहीं होगा। आप उर्दू स्पीकिंग है
पंजाबी,
आप समझाएं क्या मतलब है इसका। मैं तो पंजाबी नहीं हूँ, मेहमान
बाद का तो आदमी जल्दी में होता है, दुआ नहीं मांग सकता। तो इधर लिखा हुआ कि जो दुआ नहीं मांगते उनके फिर नाराज हो जाते हैं उनसे, क्या इस तरह बाकी है?
अच्छा, दुआ मंगिया करो संगियो
मुर्शिद न रो जावे।
सही है, संगी साथी को बोलते हैं कि ए मेरे दोस्तों तुम दुआ करो कि मेरा पीर हमेशा राजी रहे, नाराज ना हो जाए। कि जिससे पीर नाराज हो जाए ना, वो ऐसा है जैसे जिंदा होने के बावजूद मुर्दा, जिंदा लाश। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद।
आपकी बारगाह में सवाल अर्ज है कि अगर किसी का छोटा बच्चा फोत हो जाए तो वो सब्र कैसे करे?
पता नहीं मुन्ने का सदमा के माँ बाप ही समझ सकते हैं, और बड़ा सदमा होता है इसमें। लेकिन जितना सदमा ज्यादा होगा सब्र करने पर अजर भी इंशाल्लाह ज्यादा मिलेगा। बच्चे की फोतगी पर अगरचे सदमा तो होता है, लेकिन खुद बच्चा जो है ये फायदे में रहता है और इसके माँ बाप को भी इसका नफका पहुंचता है। कि मदनी मुन्ना, अगर मदनी मुन्ना है मदनी मुन्नी 7 दिन के अंदर अंदर फोत हो गए तब तो अकीका 7वें दिन है, लेकिन बेहतर जो मुस्तहब है 7वें दिन। तो ये कि बच्चा शफाअत करेगा अपने माँ बाप की, और अगर 7 दिन हो चुके मगर अकीका नहीं किया तो फिर वो शफाअत नहीं करेगा। नाबालिगी में अगर फोत हो गया तो, नाबालिगी में अकीका हो जाए तो ये अच्छा होता है। किसकी वैसे मुस्तहब है, नहीं किया गुना नहीं है, लेकिन ये कि उसके बच्चे की शफाअत बड़ी मुफीद है, तो उसका गुना तो कोई होता ही नहीं। तो ये अपने माँ बाप के लिए जहन्नम में जाने से रोक बनेगा, इसको हम स्पीड ब्रेकर या ब्रेकर बोलते हैं, रुकावट बन जाएगा और जन्नत में अपने माँ बाप को ये ले जाएगा छोटा बच्चा। बड़े फजाइल इसके छोटे बच्चे की वफात के। फिर ये कि न इस पर नमाज फर्ज थी ना रोजा फर्ज था, इस आकाम का तो मुकल्लफ था नहीं, शरी आकाम का तो कोई शरी आकाम तो हुए नहीं थे, पाबंदी नहीं थी इस पर। तो ये खुद भी छोटा बच्चा जो है नाबालिगी में, तो मुसलमान का बच्चा फोत हो जाता है वो जन्नत में जाएगा। तो ये कितना बड़ा उसके लिए एडवांटेज है, कितना फायदा है मदनी मुन्ने और मदनी मुन्नी के लिए। तो खुशनसीब होते हैं बच्चे जो इस तरह कम उम्र में फोत हो जाते हैं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के शहजादे इब्राहिम कासिम ये बचपन में वफात पा गए थे, जिनके साथ ऐसा हुआ वो यूं अपने दिल को मना ले। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हकीकी शहजादे भी तो नाबालिगी में बहुत कम सीनी में वफात पा गए। अली असगर मैदान करबला में से 6 महीने के थे, प्यासे भी थे और जालिमों ने पानी से नहीं उनकी प्यास तीर से बुझाई, हल्क पर तीर मारा, जिससे अपने वालिद मोहतरम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला उनकी गोद में अली असगर ने जाम शहादत नोश किया। इनका 6 महीने का बच्चा था। वो आपका बच्चा जो फोत हो गया तो इस पर इस तरह की बातें याद करके सब्र का सामान करें, ये ना कहे कि हाँ वो उनका मकाम तो क्या था, वो बहुत बड़े अच्छे, इनकी आजमाइश है, हम तो आजमाइश के काबिल नहीं है। तो कोई शक नहीं हम आजमाइश के काबिल नहीं है, लेकिन इस तरह की बातों से बेसब्री का रास्ता निकालना ये भी सही नहीं है। सब्र 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 करेंगे तो इंशाल्लाह अजर के हकदार बनेंगे, बेसब्री तो ये कि न जाने कहां कहां बाजों को पहुंचा देती है, यहां तक कि नऊज़ु बिल्ला बाजों को बेसब्री कुफर में डाल देती है। जी हाँ, मसलन किसी ने कहा ये बच्चा फोत हो गया, या अल्लाह तुझे इस फूल जैसे बच्चे पर भी रहम नहीं आया, तो ऐसा कहने वाला काफिर हो गया, इस्लाम से खारिज हो गया, उसका निकाह भी था तो टूट गया, हमेशा के जहन्नमी हो गया। यहां तक कि तौबा करे, नए सिरे से इस्लाम कबूल करे। तो इसलिए वो सब्र 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 करना है। बेसब्री में बाद ऐसे जुमले बोल देते लोग, फिर इसके जो हाँ में आ करेगा समझने के बावजूद उस पर भी वही कुफर का हुक्म आएगा। अल्लाह ताला हम सबका ईमान सलामत रखे और हमको अपना साबिर और शाकिर बंदा बनाए।
हसन आजाद तारी मरकजी जामतुद्दीन फैजानुद्दीन दर्जा है उला। पापा जानी आपकी बारगाह में सवाल ये था कि जब बंदे को गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से पर किस तरह काबू पाए और किस तरह मतलब उस गुस्से को अपने अंदर दबा ले, वो गुस्सा जाहिर ना हो।
गुस्सा है तो आदमी खामोश हो जाए, जिस पर गुस्सा आया उस जगह से हट जाए, गुस्सा आए तो वुजू कर ले, खड़ा है तो बैठ जाए, बैठा है तो लेट जाए, लेटा तो जमीन पर चिपट जाए लेट कर। इस तरह के गुस्से के इलाज करेगा तो इंशाल्लाह गुस्सा दूर हो जाएगा, बस चुप हो जाए, गुस्सा बोले नहीं। गुस्से में बोलेगा तो उठपटांग फिर निकलेगा और न जाने क्या क्या गुनाह हो जाए, गाली निकल जाए, झूठ निकल जाए, बदगुमानी, तोमर, गीबत, क्या क्या जुमले हो जाए अदा, तो दिल आजारियां हो जाए। तो चुप होना भी एक इलाज है इसका।
यार बापा जान, दिल की सफाई के लिए क्या किया जाए कि किसी मुसलमान का के बारे में बूझो की ना अगर पैदा हो जाए?
दुआ भी करे और अल्लाह ताला की खुफिया तकबीर से डरे कि आज मैं इससे नाराजी दूर नहीं कर रहा, मेरा रब अगर मुझसे नाराज हो गया तो मैं फिर कहाँ पना पकड़ूंगा, और उसको अपने से बेहतर तसव्वुर करे कि अल्लाह के इल्म में कौन बेहतर है कुछ पता नहीं, और इसको तोहफा ताइफ दे, इससे मोहब्बत बढ़ती है, इसके लिए दुआएं खैर करे, इसकी तारीफ करे जायज हो, तो किसी तरह ये तरकीबें करते रहे कि उसका बुग्ज़ और कीना निकल जाए जिनसे, तरकीबें ये करेंगे ना तो इंशाल्लाह निकलेगा बुग्ज़ और कीना। एक किताब है छोटी सी रिसाला मकतबतुल मदीना का, बुग्ज़ और कीना, तो वो रिसाला पढ़ेंगे ना तो भी इंशाल्लाह इसमें सब इसकी मालूमात है, इलाज भी लिखे हुए, तो इंशाल्लाह इससे बेहतरी आएगी।
मोहम्मद शहबाज अतारी लाला मुसर से, आपके एक दीवाने ने मुझे पैगाम दिया था कि आपकी खिदमत में असगनों के काफी अरसे से मैंने मनकबत लिखी हुई है, तो आपकी बारगाह में हाजिर होकर सुनाना चाहता हूँ, इजाजत मरहमत फरमाएं।
अगर यहाँ कोई मौजूद होगा उसको भी मैं इजाजत कैसे दूंगा, मेरे हज वो हो तो चलो आदमी बोले, मेरी और मनकबत।
काफी सालों से वो इसका मुंतजिर है और उसने पैगाम दिया था,
तो काम गलत किया और मैं उसको मतलब बुलाकर इज्जत बख्शू।
और इसके अलावा ये है कि पूछना था कि बाज दफा ऐसा होता है कि कहीं जाते हैं, जैसे आपके आसम मुलाकात के लिए आया था तो काफी सारे अजीज वकारब ने, दोस्तों ने सलाम या अपनी दुआओं के लिए कहा, तो इसमें ये पूछना था कि बाज वक्त की और ऐसे जगह जाते हैं जिसके लिए सलाम बोला होता है या किसी के लिए पैगाम होता है, अगर याद ना रह देना जबकि हम उन्हें बोल के आते हैं कि जी इंशाल्लाह हम जरूर करेंगे या आपका पैगाम पहुंचाएंगे या आपके लिए दुआओं के लिए कहेंगे, अगर ना कह सके या याद ना रहे, तो ऐसी सूरत में जानना चाहता हूं कि वो क्या सिलसिला होगा कि दानिश्ता नहीं ना दानिश्ता अगर ऐसा होता है
तो, अगर भूल गया तो कोई नहीं, तो हर्ज नहीं है। दानिश्ता अगर तर्क किया और बोलना भी मुमकिन था तो जर एक वादा किया है कि मैं आपका सलाम पहुंचा दूंगा तो वाजिब हो जाता है पहुंचाना। तो
अजीजो कारब की तरफ से आपके लिए सलाम भी और दुआओं के भी वो लिए उन्होंने कहा,
अलैक वालेम सलाम,
और उनके लिए दुआएं भी दे दीजिए, और मेरे लिए नजर करम के अल्लाह ताला मुझे दुनिया और आखिरत की भलाइयां नसीब फरमाए,
आमीन,
और मेरा हातमा बिल खैर हो,
बिलाफिया,
जज़ाकअल्लाह।
سگیتار محمد دانش تاری جامعۃ المدینہ فضان مہریلی اسلام آباد درجہ رابعہ ابھی 12 ماہ میں آپ کی بارگاہ میں ہے یا سیدی نماز کے احکام میں 30 واجبات لکھیں تو اگر بھولے کے ساتھ کوئی واجب رہ جائے تو اگر سجدہ صاحب نے کیا تو نماز لوٹانا واجب الادا ہے تو کیا جو بھی نماز کے واجب لکھے ہوئے ہیں ان میں سے کوئی بھی واجب چھوٹ جائے تو اس پر یہ حکم ہوگا
نماز کا واجب نماز کا واجب چھوٹے نا تو وہ سجدہ صاحب واجب ہوگا تلاوت کا واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا جان بوجھ کر تلاوت کا واجب چھوڑے گا تو گناہگار ہوگا نہ نماز کا اعادہ ہے کہ اعادہ واجب ہو گیا توبہ کرے
سوال یہ ہے کہ مغرب کے نماز میں دو سنت کے بعد اگر ہم 4 رکعت قضاء عمر نماز کی پڑھیں تو کیا ہمیں عوابین کے نوافل پڑھنے کا ثواب ملے گا
یہ عوابین تو ہے قضاء اگر ہے تو پہلے قضاء پڑھ لے ٹھیک ہے عوابین پڑھے گا تب بھی صحیح ہے کیوں عوابین اس کے بعد تو ملے گی نہیں عوابین بھی پڑھے بعد میں قضاء بھی پڑھے
محمد ارسلان اتاری مجلس مدنی پور سے پیارے باپا جان آپ جب ہمارے دادا پیر ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں تشریف لے جاتے تھے تو آپ کا کیا انداز ہوتا تھا
کبھی تشریف نہیں لے گیا میں بوجھو تو جانے
جب حاضر ہوتے تھے
سن 80 میں حاضری ہوئی تھی بس اس کے بعد تو حاضری پھر وصال ہو گیا 81 میں حاضر ہوتا تھا دن میں بارہا 2 مرتبہ عصر کے ٹائم میں عصر کے بعد غالباً اور رات کو عشاء کے بعد محفل ہوتی تھی نعت شریف کی اور روز لنگر ہوتا تھا اس میں حاضری ہوتی تھی تقریباً 2 بار جب تک مدینہ شریف میں رہا میں کبھی ناغا بھی ہوا ہوگا لیکن کم ہوا ہوگا صلو علی العبید صلی اللہ تعالی علی محمد